I'm gonna go get some more. గోపాలిక భగవానికి, విష్ణు బలరామకి, తులసి మహారాణికి జై గోపిమనందే. बोलो तुलसी महारानी की. ओके, हरे कृष्णा. तो सभी को हम स्वागत करते हैं हमें, और आज जो है विशेष दिन है अक्षय तृतीय का दिन, और इसका विशेष कई लोगों को लग रहा होगा हमको मान लो रूटीन वर्क था, रूटीन जॉब था, रूटीन डे था, फिर भी हमारे यहाँ पर बड़ी भीड़ है आज. और उसके बाद जैसे हम लोग रोज आते थे या कभी कभार आते थे, तो आज अचानक भगवान कुछ दूसरे रंग के लग रहे हैं, क्या कारण है? और कई तो आए होंगे जिन्होंने दर्शन दिया होगा, मतलब किया नहीं होगा, वो आए होंगे, उन्होंने सीधा आंखें बंद करी होंगी, अपनी लिस्ट निकाली होंगे, भगवान ये दे देना, वो दे देना, ये सब दे देना, ये पूरा कर देना, और उनको दिखा भी नहीं होगा कि भगवान आज किस रंग के हैं. ऐसे भी कोई है होंगे लेकिन हाथ नहीं खड़ा करेंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि हर तरह की वैरायटी के लोग आते हैं मंदिर में, और भगवान सभी भक्तों को पुण्य आत्मा कहते हैं, और सब बच्चों को चुप रखे आसपास. तो कितने लोगों ने दर्शन किया है? सबने सबने किए दर्शन, ठंड से, वेरी गुड. तो आज भगवान कृष्ण कौन से रंग के लग रहे हैं? कौन से? हाँ, आज अपने ओरिजिनल फॉर्म में भगवान का जो रंग है काले घने बादलों जैसा है, और उन्हें इसलिए कहा जाता है घनश्याम, घने बादल, श्याम वर्ण. इस संसार में अगर हम लोग भगवान को कोई रंग देते हैं या कोई कलर करते हैं, तो इस संसार का कलर है वो ओरिजिनल कलर नहीं है, बस उसकी उपमा बताई जाती है कि इस प्रकार के हैं भगवान. क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पर हर चीज आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल है, तो वो चीज यहां नहीं मिलती. यहां पर बस उसके समकक्ष या बोले उसकी सिमिलर चीज को हम लोग उससे उपमा देते हैं कि ऐसे होंगे भगवान, या इस रंग के होंगे, या ऐसे उनके होंगे. इसी प्रकार जैसे भगवान का जो दिव्य रूप है उसको भी जो है लोग जब यहाँ पर कहते हैं कि हमारी भी तरह है, लेकिन वो हमारी तरह नहीं है. इसलिए कई बार बोला जाता है सारी की सारी लेडीज चुप हो जाएं, शांति का दान दें, देखें आसपास कौन बोल रहा है. थैंक यू, हरे कृष्णा. तो इस प्रकार जो है ओरिजिनल कलर जो है भगवान का वो घनश्याम है, इससे मिलता जुलता रहा. इसलिए वेदों में भी कई बार बताया जाता है नीति नीति नीति, मतलब भगवान ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के इस कदर. तो कई बार लोग भगवान को निराकार समझ लेते हैं इस कारण कि भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है. लेकिन कौन से हाथ और कौन से पैर की बात की जा रही है? जैसे आपके हाथ और मेरे हाथ हैं, या ऐसे पैर, ऐसे नहीं है भगवान. हमारे जो ये हैं चमड़े के हैं, हमारा रॉ मटेरियल 5 एलिमेंट्स है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश. लेकिन भगवान का जो एलिमेंट है वो कभी नाश नहीं होता, जैसे कि हमारी आत्मा का कभी नाश नहीं होता. ना उसको जला सकते हैं, ना भिगो सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना उसमें कोई परिवर्तन आता है. ये किसकी क्वालिटी है? सोल की. और सोल जो है वो पार्ट एंड पार्सल है किसका? भगवान कृष्ण का. क्योंकि भगवान 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जितने भी ये अंश हैं, ये जीवात्मा है, ये सारे मेरे सनातन अंश हैं. तो मतलब किसी भी अंश को देख के हम लोग बता सकते हैं कि पूर्ण कैसा होगा. जैसे आप समुद्र के कुछ बूंदों को मुंह में डालें तो आप बता सकते हैं समुद्र का टेस्ट क्या होगा. एक तोला सोना उठाकर उसको टेस्ट करें, इसके अंदर कितना ग्राम सोना है, कितने कैरेट गोल्ड है, तो आप बता सकते हैं कि बाकी की खान कैसे होगी. उसी प्रकार जो आत्मा है ये सारी की सारी कहां से आएंगे? भगवान श्री कृष्ण के शरीर से. और इस आत्मा की क्वांटिटी की या हम उसको गिन भी नहीं सकते, और इसकी जो क्वालिटी हमने बताई इसका कोई नाश भी नहीं हो सकता. तो जिस क्वालिटी की आत्मा है वही सेम क्वालिटीज किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की. जिस प्रकार हमारा कभी नाश नहीं होता, हम कभी मरते नहीं, हम केवल देह को बदलते हैं, शरीर बदलते हैं. जिस प्रकार हमारे पास जो शरीर है उसमें हम रोज कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है. और फिर ये आत्मा जिस रॉ मटेरियल की बनी है वो, और मटेरियल जो है भगवान का शरीर का भी वही मटेरियल है. इसलिए इस संसार में कई बार बोल दिया जाता है कि भगवान के हाथ नहीं है, इस प्रकार भगवान के पैर नहीं. कुरान में भी हर जगह इस प्रकार लिखा है कि भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं, लेकिन हर जगह लिखा है कि भगवान देखते हैं, भगवान सुनते हैं. तो सुनने और देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें और कान चाहिए. इसका मतलब फॉर्म है उनका, वो बात अलग है कि जिस तरह हम उनके फॉर्म को कंसिडर करते हैं कि ऐसा होगा, वो वैसा नहीं है। भगवान का, अल्लाह का या गॉड का या कृष्ण का जो शरीर है वो ट्रांसेंडेंटल है, अर्थात दिव्य है। और दिव्य चीजों को हम इस भौतिक संसार के एलिमेंट जो पांच, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी ये आंख, ची चमड़ा जिससे हमारा शरीर बना है, इन चीजों से हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीजों को नहीं देख सकते, केवल रियलाइज कर सकते हैं, केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी योगी भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, कितना समय, हजारों वर्ष अपने हृदय में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा लोग विफल रहते हैं, कुछ लोगों को भगवान देख भी जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अगर मुझे जानना चाहते हो कर्म कांड के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा, उपासना कांड इत्यादि के द्वारा, इससे सबसे अच्छा है मुझे भक्ति योग के द्वारा जानो। ये सबसे इजीएस्ट वे है कि मेरे प्रति आप सेवा का भाव उत्पन्न कीजिए, और अगर आप इस प्रकार करते हैं तो सेवा भाव के द्वारा मुझे जान पाएंगे, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता, ना हम प्रवचन न लघु। अर्थात कोई व्यक्ति बड़े बड़े पंडालों में बड़े बड़े लेक्चर देता हो तो उसकी लेक्चर देने की कला से भगवान कहते हैं मैं प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हम ये गुरु जी बहुत अच्छे इतना चल रहे हैं आजकल की में, बहुत बढ़िया चल रहा है इनका, बड़े सुंदर लेक्चर देते हैं। हाँ, तो ये क्वालिफिकेशन जो लेक्चर देने की है उस गुरु को, अर्थात जो व्यक्ति है भगवान उसको, भगवान नहीं देख, मतलब भगवान को नहीं देख सकता इस क्वालिटी से, भगवान कह रहे मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुनाम श्रुते है ना, किसी में हो सकता है बहुत बड़े लेक्चर भी सुने हो, हर क्लास में मिलता हो, हर जगह जाता हो, घाट घाट का पानी पिया हो, तो भगवान कह रहे ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है मुझे जानने की। तो क्या क्वालिफिकेशन है भगवान को जानने की? भगवान कहते हैं मुझे जानने की जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत साधारण सी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान के पवित्र नाम को जप करना पड़ेगा, श्रवण और कीर्तन की विधि को भी अपनाना पड़ेगा। ये सब करने के बाद भी भगवान कह रहे हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करूंगा वही व्यक्ति मेरे धाम को आएगा या वही मुझे जान पाएगा, अदरवाइज श्रम एव ही केवलम। श्रम का मतलब लेबर, मेहनत, एवं मतलब निश्चय ही, केवलम किया है, केवल इतना। अगर हम लोगों ने बहुत लेक्चर सुन लिए या किसी ने बहुत लेक्चर दे दिए, किसी का ज्ञान बहुत अधिक है या किसी ने पूरी भगवद गीता भागवतम भी रटी हुई है, किसी को पूरी सोसाइटी बोलती है ये तो बड़ा साधु आदमी है, सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, स्टिल ये क्वालिफिकेशन भगवान के धाम जाने की नहीं है। भगवान कहते हैं इसी श्लोक के आगे, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं वही व्यक्ति मुझे जान सकता है या समझ सकता है। लेकिन जो ये कृपा है भगवान की, ये कैसे हमारे ऊपर हो? हर छोटी सी बात पर भारतीय लोग किसी भी साधु के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं? आशीर्वाद दे दो। उस आशीर्वाद दे दो के पीछे भाव क्या होता है? हमारा क्या भाव होता है जब किसी साधु के चरण छूते हैं या कोई बहुत बड़ा साधु है तो उसे क्या मांगते हैं हम लोग? जनरली क्या मेंटेलिटी रहती है हमारी? आशीर्वाद का मतलब कैश, पैसा मिल जाए। अच्छा, बच्चा नलायक है अगर तो क्या चाहिए आशीर्वाद के रूप में? बच्चा लायक बन जाए, वेरी गुड। और क्या होता है आशीर्वाद का मतलब? जितने भी डिस्कम्फर्ट्स हैं, जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाए। शरीर में रोग लगे हुए हैं, समस्याएं है, घर में किसी दूसरे को रोग है, उससे भी परेशानी है, तो आशीर्वाद के रूप में क्या मांगेंगे? हमें आशीर्वाद दीजिए। किस रूप में? इनको ठीक कर दो, उनको ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। तो हमारा आशीर्वाद यहीं पर खत्म हो जाता है। जबकि व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, जिन्हें भी शरीर मिला है, भगवान के कहने के अनुसार दुखालय अशाश्वतम, अर्थात ये भौतिक जगत दुखालय है, तो इसमें सभी लोग आते हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, चाहे रशिया में रहते हो, चाहे कनाडा में रहते हो, चाहे साउथ अफ्रीका में रहते हो, चाहे भारत में भी क्यों ना रहते हो, सारे के सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में? कि उनको इस संसार में दुख का दुख भोगना है। सबको दुख आएंगे, मानसिक रोग आएंगे, खुद के शरीर से समस्याएं आएंगी, दूसरे लोग उनको दुख देंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, सबके ऊपर सबको कष्ट मिलेंगे।
तो फिर मंदिर आकर या भगवान के पास जाकर या साधु संतों के पास जाकर हम जो आशीर्वाद मांगते हैं वो क्या मांगते हैं कि इन सब चीजों को ठीक कर दो। मान लीजिए फॉर अ टाइम बीइंग थोड़ा सा दूर हो भी गया, कुछ देर के लिए वो भी फिर आ जाएगा, दूसरे रूप में आ जाएगा। इस संसार में ऐसा कभी भी नहीं होगा कैसा कि दुख ना हो, इस संसार में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि व्यक्ति स्ट्रेस में ना हो, क्योंकि संसार की बनावट ऐसी है। इस संसार को बनाया इसीलिए गया है ताकि हर कंडीशन सोल, हर व्यक्ति इस संसार में आकर दुख भोगे, क्योंकि जब उसको दुख मिलेंगे तो क्या करेगा, वो किसको याद करेगा? क्या बात कर रहे, सारे थोड़ी करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, जो सुख में सुमिरन करे, गलत बात है, तो भी होंगे दुख। सुख में करो चाहे दुख में करो, कष्ट आएंगे। स्मरण करोगे तो कष्ट आएंगे, नहीं करोगे तो ज्यादा आएंगे, करोगे तो कम हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के पास केवल ये डिपार्टमेंट है हमारे सारे कर्मों को और कष्टों को काटने का। तो जो हमारे प्रारब्ध हैं वो इतने से हो जाते हैं, मतलब फल हमें बड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और फिर जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के कीर्तन करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके साथ एक विशेष बात और होती है। ऐसे भक्त लोग कुछ ही समय में ये समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। इस संसार में हम लोग कुछ समय के लिए हैं, तो धीरे धीरे उनके जो अटैचमेंट्स हैं, जो उनके दुख का कारण है, वो समाप्त होने लगता है। हो सकता है ऐसे भक्त के ऊपर भी शारीरिक कष्ट आए, मानसिक रोग आए, दूसरे लोग उसको समस्याएं दें, लेकिन ऐसा भक्त ऐसी समस्याओं के समय भी क्या होगा, संभाव अर्थात इक्विपोइज अर्थात डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे आप एक ऑटो में जा रहे हैं, सड़क खराब है, क्या स्थिति होगी, उछलते कूदते जाओगे ना, और वही सड़क है और आप बैठे मर्सिडीज में, फिर कैसे जाओगे, बड़े इजीली निकल जाओगे ना, वो स्पीड ब्रेकर वगैरह से कुछ पता नहीं चलेगा। कारण मैंने यहां एग्जांपल समझे पड़े, अगर हम लोग इस संसार के दुख और सुख से अटैच्ड हैं, कंफर्ट से अटैच्ड हैं, मुझे चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो मुझे ये भी चाहिए, तो हम लोग समझ लो ऑटो में सफर कर रहे हैं, बिना शॉकर वाला ऑटो, खट 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 ठक 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 ऊपर नीचे आगे पीछे ये लगा रहेगा, और हर झटके में क्या होगा, ऊह आ और आउच। और अगर हम लोगों ने भगवान के चरण कमलों को थाम लिया, अगर हमने भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर दिया और उनकी भक्ति शुरू कर दी हरि नाम के द्वारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये शुरू कर दिया, तो क्या होगा, मर्सिडीज में जा रहे हैं सर, नो प्रॉब्लम, कोई भी कष्ट आए क्या होगा, दूर हो जाएंगे, अर्थात कष्ट हमें लगेगा ही नहीं। लेकिन लोगों के अंदर इतना समस्या है, लोगों के अंदर इतना डर है भक्ति को लेकर, खासकर उनको लगता है पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, उन्हें लगता है पता नहीं घर छोड़ना पड़ेगा, लाल कपड़े पहनने पड़ेंगे, घर बार का त्याग करके जंगलों में जाना पड़ेगा, तो शायद कर नहीं। भक्ति ऐसे नहीं, अर्जुन ने पूरी गीता सुनी, उसके बाद ऐसा नहीं कि कवंडलू लेकर वो भी चला गया जंगल में, ऐसा कहीं नहीं था। कारण कि भगवान साथ थे, भगवान ने गीता सुनाने के बाद कहा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि आप जिस धर्म में, जिस घर में, जिस आश्रम या जिस वर्ण में, वर्ण और आश्रम समझते हैं ना आप, कितने लोग नहीं समझते हाथ नीचे रखे, ज्यादा तो नहीं समझते। देखिए हमारे कष्ट हमको क्यों नहीं आएंगे, हम लोग अपने जीने की कला ही नहीं समझते, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स कर लेते लेकिन मालूम नहीं कि आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स के बाद हमको सुख और शांति आएगी कहां से। 26 नहीं ठीक है, छोड़ खोला तो कोई दिक्कत नहीं, किसी गाड़ी खोलेगी हम बताएंगे नहीं कौन सी है, पल्सर गाड़ी है जिसकी 26 32 2 6 3 2 खुला है, तो कोई भी जाके ले जा सकता है। तो क्या बता रहे थे, 26 32 से पहले क्या था, वर्ण और आश्रम। अब जो हमारा लिविंग स्टाइल है हमें वही नहीं मालूम, जन्म लेते ही हमारे पास चार वर्ण और चार आश्रम के अंदर हम सेटल्ड होते हैं। भगवान कहते हैं माया अध्यक्ष सॉरी चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग शाप, ये मैंने बनाए ताकि इसमें व्यक्ति रहकर पूरी सोसाइटी में ठीक ढंग से जिए और भगवान की भक्ति करे। चार वर्ण है और चार आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये वर्ण है। और आश्रम जो है वो क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार आश्रम है। तो इनके तहत हमें कर्म करना चाहिए, इनमें रहना चाहिए। अगर आज हमें नहीं मालूम किस वर्ण में या किस आश्रम में है तो प्रभुपाद जी वैसे ही इस पूरी सोसाइटी को चार विभागों में बांट देते थे। जो लोग आजकल जो टीचर्स लोग हैं है ना, पठन पाठन करने वाले पढ़ाने वाले ज्ञान देने वाले, ऐसे लोगों को ब्राह्मण श्रेणी में डाला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे लोग जो मैनेजमेंट करते हैं सत्ता में हैं लीडर्स हैं, ये लोग इसमें आ गए। ये सेना में हैं ये क्षत्रिय कहलाएंगे। वैश्य जो लोग बिजनेस इत्यादि करते हैं या किसान हैं जो कि खेती इत्यादि करते हैं या बैंक का लेन देन करते हैं, ये सारे वैश्य कहलाएंगे। और जो शूद्र अर्थात जो जॉब इत्यादि करते हैं जो श्रम करते हैं ये सारे शूद्र श्रेणी में आते हैं। तो इसमें चार वर्ण और चार आश्रम है, हमें नहीं पता, लेकिन बताया गया कि जिन जो लोग जिस भी आश्रम में है अगर उसको नॉलेज नहीं भी है लेकिन उसके बावजूद भी अगर कृष्ण भावना में अपना लेता है तो वो इन चारों आश्रमों और चारों वर्णों से ऊपर उठ जाता है। कई बार हमें गर्व होता है ब्राह्मण कुल में पैदा होने का, क्षत्रिय कुल में पैदा होने का, जबकि शास्त्र में कहा कि कलयुग में ऐसी कैटेगरी खत्म हो गई है क्योंकि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से ही सारे शूद्र हैं कलयुग में। कैसे पहचाने जाते हैं कि कौन क्या है, अपने कर्मों के द्वारा, उसकी रुचि किन कामों में है। अगर उसकी रुचि है पढ़ने पढ़ाने में ज्ञान लेने और देने में तो ब्राह्मण की क्वालिटी समझ लीजिए। किसी की व्यक्ति की है क्षत्रिय स्वभाव है लड़ने मारने वाला तो क्षत्रिय वर्ग उसका है और नेतागिरी करता है जो। और तीसरा जो वैश्य जो बिजनेस माइंडेड है ये वैश्य में आते हैं और शूद्र मतलब जो मेंटेलिटी सर्व करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसी के साथ कृष्ण भावना भी ऐड कर दें, भगवान की भक्ति ऐड कर दें इन सारे कामों को करते हुए तो ये सारे के सारे दैवी वर्णाश्रम धर्म कहलाता है, अर्थात ये दिव्य हो जाता है। अर्थात हर क्रियाकलाप भगवान की कृपा से भगवान के शरणागत में होकर सारे के सारे ट्रांसेंडेंटल धरातल पर किया जाता है। इसलिए बताया गया कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना जीवन इस प्रकार ढाले जिसमें कि हर समय हर जगह वो भगवान का स्मरण और कीर्तन कर सके। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भगवान की भक्ति से जुड़ता है ये थोड़ा भक्त बनने का प्रयास करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे ये तो बेकार हो गया है ना, इसका बस का कुछ नहीं है, ये तो खराब है, ये तो काम की चीज ही नहीं है, ये ऐसा काम करा जो कोई नहीं करते। आजकल तो वो काम करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, अच्छी डिग्री है, अच्छी शोहरत है, वो काम करना चाहिए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वही सब काम करना चाहिए जबकि इन सब कामों का हमारे देह के साथ समापन हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति गया अमेरिका, जब वापस आया अपने गांव में तो क्या देखता है कि गांव अभी वैसा का वैसा ही है। तो नाव में बैठकर नाव पार कर रहा होता है तो बड़े फॉरेन एक्सेंट में बोलता है नाविक को कि भाई ये नाव से हमें लेके जाइए जरा गांव। तो वो होता ही इंडियन ही है, गांव का ही होता, बट वो अमेरिका से रिटर्न है तो उसका एक्सेंट चेंज हो जाता है ना, वो सारे के सारे वर्ड्स इंग्लिश सब चेंज हो जाती है उसकी। और उसके बाद वो बातचीत करना शुरू करता है, कहता है कि आपको कुछ नॉलेज है स्टार्स मून इसके बारे में कुछ जानते हो। तो कहता है बाबूजी मैं तो इसी गांव का रहने वाला छोटा सा नाविक हूँ, नाव चलाता हूँ, दो वक्त की रोटी खाता हूँ, बस इससे ज्यादा क्या मालूम है। कहता तुम्हें मालूम है आज लोग चांद पे चले गए। कहता नहीं बाबूजी। कहता जी तुम्हें मालूम है, उसके बाद बोलते कि तुम्हारा ना 25% जीवन खराब है, तुम गाँव वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। थोड़ा सा और आगे जाते हैं फिर कहते हैं अच्छा तुम्हें कुछ मालूम है आजकल लैपटॉप कंप्यूटर्स इंटरनेट सब आ चुका है। कहता वो क्या होता है। कहता है यहीं बैठ के आप चिट्ठी भेज सकते हो। कहते नहीं 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 हमारे गांव में तो दूसरा स्टाइल है, वही चिट्ठी लेते हैं थ्रू लगाते हैं लेटर लिखते जाके दे आते हैं, हमारा ये स्टाइल है। कहते तुम लोग तो बिल्कुल गांव वाले गवारे हो ना, तुम्हारा 50% लाइफ ऐसे खराब है। फिर आगे चलकर बोलता है कि रुको। कहते क्या। कहते तुम्हें मालूम है अब मोबाइल नाम की चीज आ गई है। कहते वो क्या होती है। कहते टीवी वीडियो इंटरनेट सब है, आप यहीं से दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हो। कहते क्या बात कर। कहते हम तो नहीं जानते, हम तो किसे बात कर रहा है तो उसके पास जाके बात करते हैं। कहते तुम्हारा 75% लाइफ खराब है। कुछ देर बाद बहुत लगा तूफान चलता है, आंधी आती है, नाव हिलने लगती है। तो पूछता है ये क्या हो रहा है, कहता साहब तूफान आ रहा है, आपको तैरना आता है, कहता नहीं, कहता तो तुम्हारा 100% लाइफ खराब है, मैं चला। कहने का क्या मतलब है यहां पे, जिससे हमारा जीवन बचना है, जिससे हमारी आत्मा का आत्मा को बचना है, जिससे हमारा एडवांसमेंट होना है, उस काम के प्रति हमें कुछ नहीं मालूम, उसके बारे में नॉलेज नहीं मालूम, स्कूल्स में उसके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा कि किस प्रकार किन बेसिस पे हमें नेक्स्ट बर्थ मिलता है, किन बेसिस पे हम लोग अपने कर्मों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, किन बेसिस पे हम लोग हायर प्लैनेट्स में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इनके बारे में नॉलेज नहीं है किसी को। नॉलेज है किस बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, एरोप्लेन्स के बारे में, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में सो कॉल्ड नॉलेज, लैपटॉप कंप्यूटर्स के बारे में, क्रिकेट की हर नॉलेज है। तो इस नॉलेज से हम लोगों को जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु से चक्कर से नहीं बच सकते इस नॉलेज के बेसिस पे। अगर हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रीज भी हैं, अगर हमारे पास अच्छी जॉब भी है, अच्छी वाइफ या हस्बैंड भी है, बड़ा घर भी है, बड़ी गाड़ी भी है, तो ये बचाएगी नहीं हमें, सबको मरना है और ये सारा का सारा सामान एज इट इज छोड़कर जाना है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि जो उसके जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको जो है वो समझना सीखना शुरू करे। ये जो टेम्पररी फेज के लिए हम लोग यहां पर है, कुछ समय के लिए यहां पर है, ये जो चीजें हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, इसको एज इट इज छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो हमारे साथ जाना है, जिसके बेसिस पे हम लोग को भगवत धाम या जन्म मरण के चक्कर से बचना है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आज अमेरिका, आज इंडियन गवर्नमेंट बोले कि अमेरिका फ्री भेज रहे हैं, हर जगह इसी बारे में चर्चा होगी, हर व्यक्ति जाना चाहेगा, हर व्यक्ति केवल एक देश से दूसरे देश में जाने के। लेकिन यहां पर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, किसी को कान में जो तंग नहीं देखती, चलो पूछ लें क्या होता है वहां पर, चलो पूछ लें वहां जाकर होता क्या है, सही है भी कि नहीं, वहां कैसे जाया जाता है, वहां कौन कौन रहता है, मैं कैसे करता हूं, क्या क्या ले जा सकता हूं, सारी चीज पूछनी चाहिए ना। उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कोई क्वेरी नहीं, अपना लाभ जानते नहीं कि किसने, अपना हित हम जानते नहीं कि किसने, सुबह से लेकर शाम तक एक रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर कोई गृहिणी है तो ठीक है जी, बच्चों को स्कूल भेजना है, अच्छा जी फिर थोड़ी सफाई करनी है जी, कपड़े धोने जी, उसके थोड़ा टीवी देखना है जी, फिर सो जाना है जी, फिर शाम को उठना है, शाम के खाने की तैयारी करनी है, फिर सब लोग अगर चैन चैन करना शुरू और 10-11 बजे खा पी के सो गए, रूटीन एक्टिविटी। ऐसे हस्बैंड लोग क्या करते, सुबह उठे लेट उठे नो प्रॉब्लम, ठीक है ना जी, ऑफिस जाने की तैयारी, आवाज मारते रहे कि ये दे दो वो दे दो, सारा सामान आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ऑफिस गए, ऑफिस में किलकिल परेशानियां, डांट, लेबर के साथ प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम, शाम को थके हारे ऑफिस आए, दो चार बच्चों की शिकायतें सुनी, एक आध रसीद कर दिया, वाइफ के साथ झगड़ा, सबके साथ मुंह बंद सो गए, कुछ देर टीवी देखे, खत्म, रूटीन लाइफ। ऐसी रूटीन लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, ये करते करते व्यक्ति ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, ये चार काम कर रहा है, दैट्स ऑल। ये रूटीन एक्टिविटी के लिए जीना है, रूटीन एक्टिविटीज के लिए 84 लाख योनियां बनाई है दूसरी, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली, शेर, जो उनसे मर्जी पसंद करो जाओ, नो प्रॉब्लम, वहां पर रूटीन एक्टिविटी होती है। आप देखो ना, पेड़ में सुबह सुबह चिड़िया चीं 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 करती हैं और इकट्ठी उड़ जाती हैं, चलो जॉब पर चले जाती हैं, अन्न ढूंढती हैं, खाती हैं, वापस आ जाती हैं शाम को 5 बजे। तो रूटीन एक्टिविटी नहीं करनी। एक डॉगी भी सुबह उठता है, लड़ाई लेता है, वो भी बाहर जाता है रोटी की तलाश में, कुछ इधर खाया कुछ इधर खाया, दो चार घर से गालियां पड़ी, कैसे है ना, कैसे पेमेंट नहीं मिली, कैसे पेमेंट मिल गई, रूटीन एक्टिविटी, वो सब काम करो वापस आ, शांति बनाए रखें, हरे कृष्ण। तो रूटीन एक्टिविटी के लिए जरूरी है, रूटीन एक्टिविटी का मतलब है, ये रूटीन एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं इसका क्या फायदा क्या, मुझे बताइए, हरी बोल प्लीज। तो रूटीन एक्टिविटीज 84 लाख यूनियन में कर ली हमने, अब ये जो मनुष्य नहीं मिला है इसका मतलब क्या है कि रूटीन एक्टिविटी फॉर ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग नहीं होना चाहिए। हमारी रूटीन एक्टिविटी होनी चाहिए लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए, लाइक डेली बेसिस पे हमें कुछ माला भगवान के नाम के जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का जप रोज करना चाहिए, एक माला, दो माला, चार माला, 6, 12, 18, 16 जितनी मर्जी करें लेकिन करनी चाहिए, इसको रूटीन बनाना चाहिए। क्योंकि अभी हमारा रूटीन है इस संसार से रिलेटेड, इसलिए इस संसार में फंसे रह जाएंगे, जब हम लोग स्पिरिचुअल एंगेजमेंट से आ जाएंगे हमारे पास, जब हम लोग भगवान के नामों को सुबह ऑफिस से जाने से पहले गीता के दो या चार पेज या श्लोक पढ़ के जाए, ठीक है ना, अपने पास आईपॉड हो जिसमें कुछ लेक्चर्स हो या हरि कीर्तन हो जिसको हम सुन के जा सकते हैं, और फिर शाम को वापस आकर इकट्ठे घर में पूजा करें, आरती करें, हरे कृष्ण कीर्तन करें या मंदिर आए, और इस प्रकार शाम को टीवी देखने की जगह नकली हीरो को देखने की जगह असली हीरो की कहानी सुने, कृष्णा की कृष्णा बुक पढ़े, उसमें भगवान के बड़े सुंदर सुंदर पास टाइम्स हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं, उनका दर्शन, उनका श्रवण, उनका कीर्तन वो करें। इस प्रकार अपने इन सारे सेंसेस में कूड़ा डालने की जगह क्या डालें, कृष्ण कॉन्शियसनेस डालें। दो प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक बोलते हैं शहद जो मधुमक्खी ना, और दूसरी वैसी मक्खी, दोनों मक्खियां हैं, एक ही प्रजातियां हैं, लेकिन दोनों के क्रियाकलाप अलग है। ज्यादातर संसार में कौन सी मक्खियां हैं, छोटी मक्खी। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है संसार में उस मक्खी की तरह है। ये मक्खी क्या करती है, हमेशा जाके गंध पे बैठती है, गलत एसोसिएशन में बैठती है, ऐसे लोगों के बीच बैठती है जो लेकर केवल इसी मटेरियल वर्ल्ड की बातें करते हैं, यही रहना चाहते हैं। तो ये गंदी मक्खी केवल गंध पे बैठती है। एक मधुमक्खी है जो क्या करती है, अच्छे लोगों के बीच बैठती है, अर्थात फूलों में जाती है, उसका रस लेती है, रस उसका रस का हम आस्वादन करते हैं। तो हम लोगों को देखने में कौन सी मक्खी बनना है, हमारा किसके साथ एसोसिएशन है, किनके साथ उठना बैठना है। ऐसे लोग तो नहीं है जो केवल खाने पीने और वैश्यवृत्ति की बातें करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज और केवल क्रिकेट की बातें करते हैं, इलिसिट रिलेशन की बात करते हैं, नशे की बात करते हैं। तो ध्यान रखिए ऐसे लोगों के संग से हम लोगों के अंदर भी ये सब क्वालिटीज आ जाएंगी गलत गलत। और अगर हम लोग मधुमक्खी की तरह अच्छे भक्तों का संग करते हैं, अच्छे लाइक माइंडेड लोगों का संग करते हैं, जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग सात्विक वृत्ति के हैं, जो सच बोलते हैं, तो हमारे अंदर भी वैसे गुण आ जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो इस प्रकार की क्वालिटीज डेवलप करे ऐसे लोगों के बीच में रहकर। ये बड़ा मुश्किल है कि कोई गंदे लोगों के बीच में रहे और भक्त बन जाए, बड़ा मुश्किल होता है कि हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एसोसिएशन की जरूरत है उसको। तो हमें देखना है किनके साथ रहना किनके साथ नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की भक्ति जो कि इस कलयुग में बहुत आसानी से दे दी गई, जिसमें भक्ति करने के लिए हमें कोई विशेष पहाड़ नहीं खोदने, क्या करना है, इस कलयुग के लिए केवल हरिनाम संकीर्तन का जो है युग धर्म बताया गया है, और इस युग धर्म में हमें इसका अगर हम लोग कीर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन के जो वास्तविक गंतव्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले जो सबसे आसान है जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो क्या, शांति, सुख, सेटिस्फैक्शन। ये तो बिल्कुल साइड इफेक्ट हैं, बाय प्रोडक्ट हैं इसके। इसके अलावा लाखों चीजें जो हमें हरिनाम से मिलती हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग हरिनाम के साथ जुड़े तो निश्चित रूप से हम लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और फिर आज का जो विशेष श्रृंगार है उसके विषय में बताना चाहेंगे। ये श्रृंगार होता है आज से दिन शुरू होता चंदन यात्रा का। चंदन यात्रा का मतलब आज से लगभग 700 या 800 साल पहले लगभग कुछ एक भक्त हुए थे माधवेंद्रपुरी नाम के। माधवेंद्रपुरी भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि वो कभी किसी से केवल भक्ति में रत रहते थे, भगवान के नामों में रत रहते थे, और कुछ भी किसी से मांगते नहीं थे। जैसे आजकल के साधु मांगते हैं ना कि हमें ये दे दो वो दे दो, क्यों मांगते हैं, क्योंकि लोग अपना कर्तव्य भूल गए। लोग गृहस्थ लोग इन लोगों के ऊपर तीन आश्रम डिपेंड करते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम भी उन पर डिपेंड करता है, वानप्रस्थ आश्रम भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, और संन्यास आश्रम भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब गृहस्थ व्यक्ति कमाएगा तो उससे वो ब्रह्मचारियों का पालन करेगा जो कि भक्ति में आगे बढ़े, वानप्रस्थों का सहयोग करेगा ताकि वो वानप्रस्थ के बाद संन्यास में जाए, और इन तीनों आश्रमों में कमाई नहीं करते, ना ब्रह्मचारी कोई कमाई करते हैं, ना वानप्रस्थी कोई कमाई करते हैं, ना सन्यासी कोई कमाई करते हैं। उनका केवल एक काम होता है कि वो भक्ति में आगे बढ़े। तो गृहस्थों को जो है उनका पालन करना चाहिए, लेकिन जब से गृहस्थों ने यह सब छोड़ा और केवल अपने पालन में लग गए तो इन तीनों जगहों पर अर्थात इन तीनों आश्रमों में संकट आ गया। ना कोई ब्रह्मचारी का पालन करता है और ना ही कोई वानप्रस्थ जाता है, विवाह के 50 साल के बाद कि वाइफ को लेकर वनों में जाए, ऐसा कोई नहीं करता। 50 के बाद भी वो जो है इधर उधर घूमने जाते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, और फिर 75 के बाद संन्यास लेते थे। तो ये सारी गृहस्थ की जिम्मेवारी हुआ करती थी। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी जो है वो एक बार भगवान के शुद्ध भक्त गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे, और गोवर्धन की परिक्रमा लगाते लगाते थक गए, और क्योंकि कभी किसी कुछ मांगते नहीं थे, कहीं से जो मिल गया वो ले लेते थे, अपने आप ही देते होते थे, तब सेवन करते थे। तो बड़े थके हारे भूखे प्यासे गोवर्धन के नीचे जाके बैठ गए। अचानक थोड़ी देर में एक सुंदर सा बालक उनके पास आता है और वो कहता है, बाबा मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं, तुम ये दूध पियो, तुम बहुत भूखे लगते हो। तो उन्होंने कहा, मैं भूखा? तुमने को किसने बताया? कहते वहां गांव की कुछ गोपियां थी जिनके पास आप वहां से निकले, पानी आपने शायद पिया, तो मुझे उन्होंने बताया कि यहां पर एक बाबा आए हैं जो भगवान के अच्छे भक्त हैं, उन्हें भूख प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा, अच्छा, कहते मैं आपके लिए दूध लाया हूं, आप दूध पीजिए। कहते मैं नहीं पीऊंगा। कहते नहीं पीजिए, मेरे गांव में जो भी आता है वो भूखा प्यासा नहीं जाता है, तो आपको पीना पड़ेगा। लेकिन मतलब उस माधवेंद्रपुरी को उनका रूप इतना श्रृंगार था, सुंदर लग रहा था कि ज्यादा बोल नहीं पाए, उन्होंने दूध का डब्बा ले लिया और पी लिया। तो बालक जो है ये बोलकर गया कि मैं लेके जा रहा हूं, थोड़ी देर में वापस अपने ये दूध का जो मर्दमान है लेने वापस आऊंगा। माधवेंद्रपुरी उस पर ध्यान देने लगे कि अभी आएंगे, कब आएंगे, सोचने लगे उनके बारे में। इस बीच थोड़ी नींद आई और अचानक वही बालक उनके स्वप्न में आ गया। उस बालक ने कहा कि माधवेंद्रपुरी में कोई और नहीं, मैं वही हूं गोपाल जिसने कि गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाया था, और मेरा नाम क्या है? गोपाल काना कृष्ण, मैं नंद बाबा और यशोद का पुत्र हूं, और मैं पिछले काफी समय से पास की झाड़ियों में दबा पड़ा हूं, मुझे वहां से निकालो और मुझे स्थापित करो गोवर्धन के ऊपर और अन्नकूट फेस्टिवल करो। माधवेंद्रपुरी का सपना टूटता है, उनका ही क्या था, भगवान मेरे स्वप्न में आए, ये तो वही बालक थे, और मुझे कहा कि वहां पर मैं दबा पड़ा हूं। माधवेंद्रपुरी कुछ गांव वालों को लेकर गए और उस जगह को खुदवाया, तो क्या देखते हैं, वहां पर भगवान का एक बड़ा सुंदर गोपाल जी सुंदर एक विग्रह ब्लैक रंग में वहां से उपस्थित होता है। सारे गांव वाले बड़े खुश होते कि वाह, जमीन के अंदर से भगवान निकले और पहले ही स्वप्न में बता दिया। उसके बाद उनको जो है गोवर्धन के ऊपर स्थापित करते हैं और बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, अन्नकूट फेस्टिवल। सारे गांव वाले, दूसरे गांव वाले, जहां जहां खबर फैलती गई, सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ भगवान के लिए बना के आने लगे। जैसे गोवर्धन पूजा में देखते हैं हम लोग बाहर चार टेबल्स लाइक बहुत बड़ा पहाड़ सा बनाते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ राइस है ना, मिठाइयां, फ्रूट्स, इस तरह करके पहाड़ सा बनाते हैं। लोग बहुत लोग अपने घरों से बड़ी सारी चीजें बनाकर लाते हैं, तो अन्नकूट उसे बोलते हैं। तो उसी प्रकार सारे गांव वालों ने इकट्ठा किया, इतना किया कुछ मत, और सुंदर फेस्टिवल मनाया गया। और कुछ दिन बाद जब माधवेंद्रपुरी सो रहे थे, उनको फिर से स्वप्न में भगवान गोपाल जी आए। उन्होंने कहा, माधवेंद्रपुरी, क्योंकि मैं पिछले काफी समय से नीचे दबा पड़ा था, तो मेरे शरीर में काफी गर्मी, मुझे काफी जलन हो रही है, इसलिए तुम क्या करो, तुम उड़ीसा जाओ और मेरे लिए क्या लेकर आओ, चंदन लेकर आओ वहां से, और उसको पीस कर मेरे शरीर पर लगाओ, जिससे मेरे शरीर को कुछ शांति मिलेगी, कुछ ठंडक मिलेगी। भगवान के क्योंकि शुद्ध भक्त थे, भगवान के स्वप्न में आज्ञा हुई तो चल पड़े, कहां, वृंदावन से उड़ीसा की तरफ पैदल। कोई कन्वेंस नहीं था, कोई डीटीसी की बसें नहीं थी, कोई लिफ्ट मांगने का साधन नहीं था, पैदल चल पड़े भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए। और जब चले तो चलते चलते उड़ीसा के पास रेमुणा जगत पर पहुंचे, जहां पर कि क्या था, एक भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर था वहां पे, गोपीनाथ भगवान। तो ये रात को वहां रुके और उनको पता चला कि यहां पर भगवान गोपीनाथ को बड़ी सुंदर खीर भोग लगती है, जिसे बोलते अमृत केली खीर, और ये इतनी स्वादिष्ट होती है, इतनी स्वादिष्ट की मतलब अमृत के समान, देवताओं को भी जो है दुर्लभ थी ऐसी खीर। तो माधवेंद्रपुरी ने पुजारी को कहा कि आप ये खीर कैसे बनाते हो, क्या मुझे चखाओगे, क्योंकि मैं भी अपने गोपाल जी के लिए बनाना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने देखा, अरे ये तो अभी अंदर भोग लगने के लिए जा रहा है और मैंने पहले डिमांड करी है, तो ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी को आत्मग्लानि हुई, उन्होंने कहा भगवान के खाने से पहले मैंने खाने की इच्छा कर ली, जबकि उनकी इच्छा पूर्ण थी, वो इसलिए खाना चखना चाहते थे ताकि मैं वृंदावन जाकर गोपाल जी को भोग लगाऊं। और इस प्रकार माधवेंद्रपुर को क्योंकि ठीक नहीं लगा, वो उन्होंने स्थान को छोड़ा और बाहर चले गए। और जब 12 कसबों में जो है प्रण पुजारी ने भगवान को खीर ऑफर करी, बाद में खीर उठाई, बांटी, खत्म की, बर्तन धोए, सो गए जाके। रात को ये गोपीनाथ जी उस ब्राह्मण के, किस ब्राह्मण के, जो कि पुजारी था, उसके स्वप्न में आ गए और कहा, हे पुजारी, तुमने जो मुझे 12 कसोले खीर भोग लगाया था उसमें से एक कसोला मैंने अपने शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए छुपा लिया था, और तुम जाओ उस कसोले को लेकर उसी माधवेंद्रपुरी को दो, क्योंकि वो उसको चखना चाहता था और गोपाल जी के लिए बनाना चाहता था। तुम जाओ और ये व्यक्ति तुम्हें इस नाम का यहां पर मिलेगा। माधवेंद्रपुरी ये सुनते ही वो जो है पुजारी उठे, स्वप्न खुला, उठे, देखा, अरे मैंने सब कुछ धो दिया था, फिर कैसे बच गया? देखा भगवान पीछे से फिर कसोला निकला, पर्दे के नीचे छुपा के रखा था भगवान ने, अपने भक्त के लिए भगवान ने खीर की चोरी की, इसलिए उस भगवान का नाम क्या पड़ गया, खीर चोर गोपीनाथ। कितने लोगों ने दर्शन किए? ये उड़ीसा में रेमुणा नाम की जगह है जहां पर भगवान के विग्रह दीवार के अंदर ही सटे हुए हैं, और ये भगवान ने जो है अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए एक खीर का कसोला जो है पर्दे के नीचे छुपा दिया। शुभ भक्त की इच्छाओं को भगवान ऐसे भी पूरा करते हैं। और जैसे पुजारी को मालूम पड़ा खीर को लेकर पुजारी भागे, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी इस प्रकार चिल्लाए, बाजार में गए तो उन्होंने कहा, हाँ बोलो क्या है? कहते तुम हो? कहते हाँ मैं हूं माधवेंद्रपुरी। कहते तुम्हारे लिए ये खीर? कहते मेरे लिए खीर? कहते हाँ खाइए इसको, क्योंकि मैंने जो खीर भोग लगाई थी, मैंने सब कुछ सोचा, सब कुछ भोग लगाकर उठा लिया, लेकिन भगवान गोपीनाथ जी ने तुम्हारे लिए खीर पर कसोला तुम्हारे लिए केवल चुरा कर रखा था अपने पीछे। तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, हर जगह माधवेंद्रपुरी की जय जय होने लगी, इतने शुद्ध भक्त कि भगवान स्वयं उनके लिए खीर चुरा रहे। और इस प्रकार आप देखिए, कई लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, कई लोग बोलते हैं भगवान शून्य है, कई लोग बोलते हैं भगवान निर्विशेष है, कई लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कोई बोलते हैं मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर यही बुत, यही विग्रह भगवान के बोल पड़ते हैं, यही भगवान चुरा लेते हैं अपने भक्तों के भाव को देखकर। लोगों को लगता है कई जगहों पर कि नहीं नहीं हमारे इस ग्रंथ में तो लिखा है ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे इस ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भक्ति इस प्रकार नहीं होती मूर्ति की पूजा से। एक और संगठन है जो कहता है कि नहीं मूर्ति पूजा मत करो, लेकिन जब जब व्यक्ति की भक्ति करते हुए उसकी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है तो वो समझ पाता है कि अगर मुझे जब हर जर्रे जर्रे में भगवान को बताया जाता है कि परमात्मा का स्वरूप है, तो उस जर्रे जर्रे से जब इकट्ठा करके मैं विग्रह बनाता हूं तो उस जर्रे में या उस विग्रह के अंदर भगवान नहीं है क्या? और फिर भगवान का जो फॉर्म है ये कंकॉक्शन नहीं है, ये मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन नहीं है, भगवान के विग्रहों का विशेष शास्त्रों में भगवान के रूप का वर्णन है। इतना ही नहीं, कई जगहों से भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है इस फॉर्म में, इस कलर में। वृंदावन में राधा रमन का जो मंदिर है उसमें जो इतने छोटे से डेटीज हैं, वो स्वयं एक शालिग्राम शिला, जो नेपाल में गंडकी नदी है जिसमें शालिग्राम शिलाएं अर्थात विष्णु की शिलाएं जो निकलती हैं, जो स्वयं विष्णु, आप उनका दर्शन कर सकते हैं मंदिर के अंदर। सामने जहां कृष्ण बलराम खड़े हैं उनके नीचे एक ट्रे में एक स्क्वेयर गोवर्धन शिला है जिनकी आंखें भी लगाई हुई है, उनके नीचे 12-13 ब्लैक कलर की शिलाएं हैं, कोई नरसिंह शिला, कोई दूसरी तरह की शिलाएं, सबके नाम है इन शिलाओं के, इन शिलाओं की छोटी छोटी आंखें लगाई हुई हमने, इन सब का पूजन करते हैं। कौन हमारे मध्य में जो रहते हैं मंदिर में, सन्यासी हैं, विदेशी जो कि लॉस एंजलिस के वैसे निवासी हैं, वो इन विग्रहों की सेवा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। और शास्त्रों में लिखा है इन शिलाओं को सेवा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के धाम जाता है वापिस। और बताते हैं कि अगर कोई इस रेडियस में लगभग 2-4 किलोमीटर के रेडियस में भी 8 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई प्राणों का त्याग करता है जहां पर ऐसी शिला पड़ी है, जहां पर पूजन हो रहा है, तो इतने रेडिटर में जो व्यक्ति भी प्राण का त्याग करेगा वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इसके अंदर पोटेंसी है। हमें लगता है पत्थर, कई लोगों ने बोल दिया पत्थर पूजने से क्या होगा, अरे ये क्या मतलब, ये तो भगवान है, इस प्रकार के ऑफेंसेस करते हैं नास्तिक प्रकार के लोग। लेकिन उनसे ये पूछो कि इतने हजारों इतने लाखों लोग आज तक लगे हुए इन सबकी पूजा करने में, क्या टेस्ट मिलता है बताऊं ना? ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने धन संपदा सब छोड़कर भगवान को समर्पित हुए, क्या टेस्ट मिल रहा है उनको? तुम्हें वो टेस्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये थोड़ी उनको टेस्ट नहीं मिल रहा, तुम्हें भी टेस्ट मिल रहा है ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग स्लीपिंग में। अभी तुम्हें आहार निद्रा भय मिथुन में मजा आ रहा है, अभी कागज खाली कागज के नोट इकट्ठे करने में मजा आ रहा है, लेकिन कई लोगों को नहीं आ रहा इसमें, उन्होंने त्याग दिया इन सबको फॉर द हायर टेस्ट फॉर द हायर पर्पज एंड देट उनको एंजॉय हर पद पर उनको पदम पदम जो है उनको स्वाद प्राप्त होता है भगवान की भक्ति में। इसलिए आज भी लोग अपने जीवन को जो है भगवान को निछावर करते हैं, समर्पित करते हैं, भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के विग्रहों का जो है जो हम बात कर रहे थे, इस प्रकार छुपा लिया भगवान ने, रही भगवान अपने भक्ति रखी। ऐसे ही साक्षी गोपाल के विषय में आपने सुना होगा, जिन्होंने अपने भक्ति रक्षा करने के लिए उनकी साक्षी देने के लिए वृंदावन से चलकर वो विग्रह है उड़ीसा तक गए। जगन्नाथपुरी से 5-10 किलोमीटर दूरी पर है साक्षी गोपाल नाम की जगह है और साक्षी गोपाल नाम के विग्रह है, लगभग 5-6 फीट के हैं वो, और उनका दर्शन क्योंकि वो भगवान वृंदावन से चलकर गए थे अपने भक्ति गवाही देने के लिए, और कहा था पीछे मुड़कर मत देखना तो मैं खत्म वहीं स्थिर हो जाऊंगा। और उड़ीसा में जब उसे पीछे मुड़कर देखा तूफान चल रहा था, आवाज आना बंद हो गई थी भगवान के नौकर की, पीछे मुड़कर देखा भगवान वहीं स्थिर हो गए। वो विग्रह आज भी वहीं पर है, कितने लोगों ने दर्शन किए, भाग्यशाली है। हम लोगों को लगता है तीर्थ बस वही है जहां पर थोड़ी डुबकी मार लें, थोड़ा ये कर लें वो कर लें। कलयुग में लिखा भागवत में लोग इतने मूर्ख होंगे कि दूर कहीं पर एक छोटा सा पॉन्ड होगा ना जहां पानी कुछ इकट्ठा होगा, बस वहां जाकर डुबकी लगाएंगे कि हाँ मैं तो धाम जाए ना, तो मैंने बड़ा कुछ कर लिया। उनके घर के पास जिस कुंड में डुबकी मार रहे हैं या जिस हरिद्वार में डुबकी मार रहे हैं, ये हरिद्वार का जो जल है ये इतना प्योर क्यों है? क्योंकि भगवान के चरण कमल ने जब इस ब्रह्मांड का छिद्र अर्थात छेद किया, चरण ने नाखून ने जब इस ब्रह्मांड को फाड़ा, तो ऊपर से जो विजय नदी है उसका जो जल है वो भगवान के अंगूठी को टच करता हुआ नीचे आ रहा है, इसलिए ये इतना पावन जल है कि भगवान के चरण कमलों को धोता आ रहा है। और ऐसे चरण कमलों का जल जब हमारे शीश पर जिसमें डुबकी लगाते हमारे पापों को समाप्त कर देता है, ऐसे विष्णु के चरण ऐसे कृष्ण के चरण इतना नहीं, उनके मुख उनके रूप उनका वर्णन जब होता है उनकी कथा जब होती है लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों? इसलिए कहते हैं ये लोग मूर्ख हैं जो इतनी इतनी दूर जाकर डुबकियां लगा रहे हैं, लेकिन घर के पास जहां भगवान कृष्ण की कथा चल रही है जो सबसे परम धाम है, यहां तक कि गंगा यमुना 33 करोड़ देवी देवता ये सब लोग भी आकर भगवान की कथा सुनते हैं और हम जाते हैं डुबकियां लगाने। एक्चुअली जितने लोग इधर उधर इतनी दूर दूर जाते हैं, सच में देखिएगा ज्यादातर उनमें लोग जो होते हैं केवल पिकनिक मनाने जाते हैं खाली, कि वहां पर ये खा लेंगे वहां पर ये खा लेंगे थोड़ा दिन रह लेंगे स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे डुबकियों को लगा लेंगे, समझ रहे? तो ज्यादातर मेंटालिटी होती है। लेकिन हम लोग अगर देखें भगवान इतने दयालु इतने कृपालु कि अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं। तो जब खीर का कसौड़ा छुपा लिया लोगों को मालूम पड़ गया तो माधवेंद्रपुरी वहां से भाग गए कि मुझे अपने बारे में सुना नहीं है, लोग मुझे महान भक्त शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, और उड़ीसा पहुंच गए जहां से कि उनको वो चंदन लेना था। लेकिन उनसे पहले वहां ग्लोरीज पहुंच गई, सब लोग जानते थे, इसलिए श्री राधा राधिका भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री भगवता भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बिताए गौर प्रेमानंदे। लास्ट 2 मिनट्स तो समाप्त करेंगे तो आप सब शांति का दान दें, 2 मिनट की वो स्टोरी है इसको बता के खत्म करेंगे। तो इस प्रकार जब वहां पहुंचे तो सब लोग जानते थे कि माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर चुराई, तो सबने जो है वहां पर उनको इकट्ठा करके चंदन लिया, वो 38 किलो चंदन और 2 किलो कपूर लगभग 40 kg सामान उठाकर लाए। तो रात को जाके उसी मंदिर में रुके खीर चोर गोपीनाथ ने, और रात को गोपाल जी वृंदावन वाले फिर से उनके स्वप्न में आ गए और कहा माधवेंद्रपुरी तुम इतनी दूर आओगे छोड़ो, तुम क्या करो इस चंदन को घिस कर खीर चोर गोपीनाथ के लगा दो। कहते क्यों? कहते इसलिए क्योंकि इस विग्रह में और मुझे कोई अंतर नहीं है। कहते भगवान गर्मी तो आपको लग रही थी, कहते नो प्रॉब्लम, इनमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है, तुम इसको घिसो और इनको लगा दो, मुझे भी ठंडक मिल जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी ने 21 दिन तक उस चंदन को घिसा, मतलब 21 दिन तक चला और रोज भगवान के शरीर पर जो है उसका लेप करते थे और गोपाल जी को ठंडक मिलती है। ये गोपाल जी का मंदिर जो विग्रह निकले थे वृंदावन से जब आक्रमण हुआ औरंगजेब इत्यादि का, तो ये वगैरह सारे वृंदावन के चले गए जयपुर में एक दो करो एक करोली में, और जो ये गोपाल जी जो माधवेंद्रपुर खोज निकाले थे, ये माधवेंद्रपुर के जो ब्रिटिश हैं गोपाल जी, ये समय उदयपुर में है, जिनका बहुत सुंदर दर्शन वहां मिलता है, जिनको बोला जाता है श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा भी होता है ना, तो ये वो जगह है, ये विग्रह है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या करा, चंदन लगाया 21 दिन तक। तो इस्कॉन में हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में एंगेज करने के लिए, भक्तों को एंगेज करने के लिए, लोगों को धन लगाने के लिए, उनकी मेहनत लगाने के लिए, इन कंडीशन सोल्स की सेवा भगवान के शरीर पे लगाने के लिए हम लोग इस प्रकार का जो है 21 दिन का कार्यक्रम रखते हैं, ताकि लोग आए चंदन घिसे भगवान के लिए और उनकी वो सेवा भगवान के शरीर पे लगाई जा सके, जिससे कि वो भी भाग्यशाली बने। तो इस प्रकार विश्व के सभी केंद्रों में हम लोग जहां पर कम विग्रह हैं, यहां पर जैसे दो बड़े बड़े विग्रह हैं, तो उनके शरीर में समय लगता है काफी चंदन लगाने में। आज भी जो है 4.25 घंटे में दर्शन खुले भगवान को सजाने में, श्रृंगार करने में, इसलिए हम लोग रोज नहीं लगाते, रोज छोटे विग्रहों को लगाते हैं भगवान के, और बड़े विग्रहों को एकादशी में लगेगा। 6243 होंडा सिटी हॉर्न बजे उनकी वजह से बज रहे हैं, प्लीज हटा दीजिए। तो इस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की बात करते हैं, भगवान का कीर्तन, भगवान का नमन, भगवान का ही सरेंडर, लेकिन जो भगवान है वो अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए इस प्रकार भगवान भक्तों के साथ अपने रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं शुद्ध भक्त बनना, तो शुद्ध भक्त बनना और शुद्ध भक्त की इच्छा इतना ही डिस्टेंस है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। और कलयुग में भक्ति शुरू होती है हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्षय तृतीया, हम सबको चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा करें स्पिरिचुअल जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। उसमें आता है डोनेशन, उसमें आता है भगवान की भगवद्गीता पढ़ना, उसमें आता है हरे कृष्ण महामंत्र जपना, उसमें आता है प्रसाद खाना, उसमें आता है भगवान का स्मरण, कीर्तन, संकीर्तन, ये सारी की सारी ऑस्पिरिटी हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने नहीं करी वो रात तक 12 बजे से पहले जितना कर ले अच्छा है। बोलिए हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की, चंदन यात्रा महामहोत्सव की, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।